ऐसा अनुभव करते हो। होली हंस होना, तो हंस क्या करता है, हंस का काम क्या होता है? एक मोती चुनता है और
पानी
शेर नीर अलग करता है,
तो
और क्या करता है? श्वेत है, पवित्र है, स्वच्छ है, और किसी ने कहा मोती चुगना और दूसरा दूध और पानी को अलग करना। एक है ज्ञान रत्न चुगना अर्थात धारणा करना, और दूसरी विशेषता है निर्णय शक्ति की विशेषता। दूध और पानी को अलग अलग करना अर्थात निर्णय शक्ति की विशेषता। जिसमें निर्णय शक्ति होगी वह कभी भी दूध की बजाय पानी नहीं धारण करेगा। दूध की वैल्यू पानी से ज्यादा होती है। तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ को पानी समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो ऐसे होली हंस हो, निर्णय शक्ति अच्छी है या कभी पानी को दूध समझ लेते हो, कभी दूध को पानी समझ लेते हो, व्यर्थ को अच्छा समझ ले और समर्थ में बोर हो जाए नहीं। तो होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ हंस सदा स्वच्छ दिखाते हैं, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए ना, मैलापन निकल गया या अभी भी थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया? कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता? कभी कभी मैले का असर होता है। तो स्वच्छता श्रेष्ठ है ना, मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो तो क्या पसंद करेंगे? स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद करेंगे? तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। व्यर्थ है पत्थर। कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है ना, परेशान तो होते हो ना कि ये क्या आया। तो पत्थर दुख देता है और रत्न खुशी देता है। अगर किसी के हाथ में रत्न आ जाए तो परेशान होगा या खुश होगा? खुश होगा ना। अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दुख होगा। तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना, सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करना। एक एक रत्न की वैल्यू अनगिनत वैल्यू है। आपके पास कितने रत्न है? अनगिनत है, रत्नों से भरपूर है, खाली तो नहीं। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो। तो क्या सुना रहे बाबा? होली हंस की विशेषता। क्या विशेषता है? सबसे पहले तो निर्णय शक्ति। पहले तो वो मोती चुगता है केवल, पत्थर नहीं, और दूध और पानी को अलग करता है। तो ये अलग करना है निर्णय शक्ति की विशेषता। जिसमें निर्णय शक्ति होगी वह कभी भी दूध की बजाय पानी नहीं धारण करेगा। दूध की वैल्यू पानी से ज्यादा नहीं है। तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ।
पानी का घर, दूध का घर पानी से ज्यादा?
हाँ, ज्यादा है। तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ है पानी के समान और समर्थ है दूध के समान। इसका निर्णय कौन करेगा कि व्यर्थ कौन सा है और समर्थ कौन सा है? तो ऐसे होली हंस होना, होली हंस। निर्णय शक्ति अच्छी है कि कभी पानी को दूध समझ लेते हो, कभी दूध को पानी समझ लेते हो, व्यर्थ को अच्छा समझ ले और समर्थ में बोर हो जाए नहीं। तो होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। तो तीन विशेषताएं होली हंस की सुनाई है बाबा ने। सदा स्वच्छ दिखाते, स्वच्छता अर्थात ही पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए हो, मैलापन निकल गया है या अभी भी थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया है? कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता, कभी कभी मैले का असर होता है, तो स्वच्छता श्रेष्ठ है ना। मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो तो क्या पसंद करेंगे, स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद करेंगे? तो किसको स्वच्छ करना है? मन और बुद्धि सदा स्वच्छ अर्थात पवित्र, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, बाबा ने आज कहा है। बाप का दिल तख्त कैसा है? प्योर, सदा प्योर। तो जो आत्मा है सदा प्योर है, सदा स्वच्छ है, वही इस तख्त पर विराजमान हो सकती है, वही तख्त नशीन बन सकती है, बाकी नहीं। फिर भी बच्चे क्या होता है, खेल करते नीचे उतरते इस तख्त से। अमर्यादा और अपवित्रता, ये दो बातें कही है। जो आत्माओं को तख्त से नीचे लाता है, बाप के तख्त पर बैठना अर्थात क्या, दिल तख्त पर बैठने का क्या अर्थ है? वो विधि है उसकी। तख्त पर बैठना अर्थात उसके दिल में हम अर्थात उसके समीप अर्थात उसे कौन प्रिय है? जो आत्मा है पवित्र है वो उसे प्रिय है, जो स्वच्छ है वो उसे प्रिय है, जो व्यर्थ से मुक्त है वो उसे प्रिय है, जिनमें अपवित्रता नहीं और अमर्यादा नहीं वो उसे प्रिय है, और जो फॉलो फादर करने वाले हैं वो उसे प्रिय है। ऐसा ये तख्त है। तो मन और बुद्धि स्वच्छ, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, व्यर्थ भी अपवित्रता है। साधारण संकल्प भी बाबा ने अपवित्रता कहा है। पवित्रता और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है? एक है संपूर्ण पवित्रता, एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक छोटा सा भाग है उसका, एक प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है, परंतु वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना पवित्रता का जो भवन है वो निर्माण नहीं हो सकता है, उसका वो फाउंडेशन है, बुनियाद है। परंतु संपूर्ण पवित्रता जो है बहुत ऊंची बात है, उसमें संकल्प स्वप्न वृत्ति दृष्टि सब कुछ आ जाता है, यहाँ तक कि व्यर्थ और साधारण से भी मुक्ति, वो पवित्रता की परिभाषा है। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना, हर समय बुद्धि में क्या हो, ज्ञान रत्न। कल कहा ना बाबा ने, इसका कथन नहीं किया जा सकता, कितना वैल्यू है, अकथनीय है ये। एक एक ज्ञान रत्न अकथनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता इसकी वैल्यू का। तो बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा, इसको कहा जाता है रत्न चुभना। दो ही चीजें, प्रकाश या अंधकार, ये है तो वो नहीं और वो है तो ये नहीं। ज्ञान है प्रकाश। अगर दुख हो रहा है किसी भी कारण से, दुख की महसूसता है, तो जरूर वहां पर अंधकार है। उस दुख से नहीं लड़ना है, उस अंधकार से नहीं लड़ना है, वो जाएगा नहीं, कितना भी उसे भगाओ तलवार से, वहां प्रकाश को लाना पड़ेगा, ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो स्वतः ही विलीन हो जाएगा। तो बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा, इसको कहा जाता है रत्न चुभना। व्यर्थ है पत्थर, कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो क्या आता है, दुख की लहर आती है। परेशान तो होते हो ना कि ये क्या आया, तो पत्थर दुख देता है और रत्न खुशी देता है। अगर किसी के हाथ में रत्न आ जाए तो परेशान होगा या खुश होगा? खुश होगा ना। अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दुख होगा। तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना, सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करना। एक एक रत्न की अनगिनत वैल्यू है। आपके पास कितने रत्न हैं? अनगिनत है, रत्नों से भरपूर है, खाली तो नहीं हो। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो, फिर क्या करो बुद्धि में? मनन करो, चिंतन करो, और क्या करो? अनुभूति करो, याद करो, सिमरन करो, बुद्धि योग बाप से लगाओ, जिसने दिया है सब कुछ। अभी कल परसों मुरली में आया था ना, कोई स्त्री को उसका पति यदि कुछ दे दे तो वो सबको सुनाती है, ये मिला वो मिला। अभी कल परसों मुरली में था, गुणगान करती है अपने पति का। ये तो बापों का बाप और पतियों का पति है। कबीर ने कहा हुआ है ना, कोई एक स्त्री है उसका पति उसको नथनी देता है तो सब जगह सबको बताती है कि देखो मेरे पति का मुझसे कितना प्यार है। नथनी यार दियो, सिमरती बारंबार, नाक करतार दियो, उसको रही विसार। नाक किसने दिया तुमको? उसको विसार दिए, पर जिसने नथनी दी सिमरती बारंबार और नथनी नाक का करतार दियो, उसको गई विसार। जिसने सब कुछ दिया है उसके उपकारों को याद करना, उसके प्यार को बढ़ाना, उसने जो कहा है उसने जो बोला है उसी में रमन करना, तो बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होगी। नहीं तो दूसरा इस संसार में व्यर्थ से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है। आज तक विश्व में कई लोगों ने व्यर्थ से मुक्त होने का प्रयत्न किया, कोई हो ही नहीं सका, क्योंकि इतना श्रेष्ठ ज्ञान ही नहीं है उनके पास। व्यर्थ की परिभाषा ही नहीं है, किसे व्यर्थ कहे, उसका क्या पैमाना है, किसे व्यर्थ कहे और किसे समर्थ कहे, किसे पाप कहे और किसे पुण्य कहे। जो किसी के लिए पाप है दूसरे के लिए पुण्य है, जो किसी के लिए पुण्य है उस किसी और के लिए पाप है। हिटलर ये नहीं समझता कि वो जो कर रहा है पाप है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर सबको मारना। उसके लिए वो जो कर रहा है वो सही है ये मानना ही उसके लिए ठीक है, तो ही वो सब कुछ कर सकता है। उसकी पाप और पुण्य की परिभाषा अलग, हमारी पाप और पुण्य की परिभाषा अलग। तो ये निर्णय कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, कोई नहीं जानता। ये जानेगा तब जब परमात्मा स्वयं आकर बताएंगे, तब तक काल चक्र में किसी ने इसको नहीं जाना। तो एक एक रत्न की अनगिनत वैल्यू है। आपके पास कितने रत्न हैं? कितने है? मुरलियों की किताबों में नहीं, नहीं मुरलियों की किताबों में नहीं, बुद्धि में कितने हैं? बुद्धि की किताब में कितने रखे हैं? अनगिनत रत्नों से भरपूर है, खाली तो नहीं है। जिस समय खाली होगा उस समय व्यर्थ आएगा। जिस समय साइंस का नियम है कोई भी जगह वैक्यूम नहीं रहती है, वहां पर तुरंत ऑक्यूपाइड हो जाती है किसी ना किसी चीज से। ज्ञान बुद्धि को ज्ञान से खाली करो तुरंत वहां व्यर्थ आ जाएगा। दो ही है, वो निकला तो दुख। जो जो बाबा ने कहा है उसके विपरीत है वो सब अज्ञान है। उसने जिसे ज्ञान कहा बस वही ज्ञान है, बाकी संसार में आज तक व्यक्तियों ने जो कुछ कहा वो सब झूठ है। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है, जो कुछ मनुष्यों ने कहा है आज तक, उसमें भी अच्छी बातें हैं परंतु संपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य असीम है, अमाप है। अमाप को जानने के लिए छोटे से बाहर निकलना पड़ेगा हमको। बेहद बेहद को जानना है तो बेहद ही बनना पड़ेगा। सागर को जानना है, असीम बनना है, असीम को पाने के लिए असीम बनना पड़ेगा। जैसे वो दिखाते हैं ना, एक हंस उड़ते उड़ते एक समंदर से दूसरे समंदर जाते जाते एक बार नीचे उतरा, एक कुएं के पाट पर बैठा। नीचे मेंढक था, मेंढक ने कहा कि भाई हंस कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं एक सागर से दूसरे सागर की ओर जा रहा हूँ। मेंढक ने कहा सागर कैसे होता है? तो बोलता है तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो कहते हैं ऐसे कैसे? वो छलांग लगाता है, क्या इतना बड़ा होता है? तो वो हंसता है, अरे नहीं तुम नहीं समझ पाओगे, इतना बड़ा नहीं होता है। तो बड़ी छलांग लगाता है कुएं में, क्या इतना बड़ा? तो बोलता है नहीं इतना बड़ा भी नहीं, पूरी परिधि को घूमता है। इतना बड़ा? बोलता है इतना बड़ा भी नहीं, तुम इस कुएं में बैठकर उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो उसको गुस्सा आता है, फिर वो कहता है यही सागर है, तुम्हें क्या पता सागर क्या होता है। बुद्धि के कुएं, हद की बुद्धि के कुएं में बैठकर बेहद को नहीं जाना जा सकता है। विचारों और शब्दों की परिधि से बाहर है सत्य, सत्य असीम है, बेहद है। उसे जानने के लिए, उसे पाने के लिए ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा। शब्दातीत है वो, शब्दों में खोकर वाक्यों के जंगलों में सत्य को नहीं खोजा जा सकता। निकलना होगा बाहर, व्यर्थ से बाहर। उस अशरीरी अवस्था में ही सत्य का अनुभव हो सकता है। मुरली में क्या है उसको पढ़कर, याद कर, सिमिरन कर और सुनाना, ये सत्य नहीं है। ये तो एक स्टेप है बस। सत्य की परम अनुभूति अशरीरी अवस्था में ही, बेहद में ही की जा सकती है। जैसा वो है, बी स्पिरिट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन स्पिरिट, बाइबल में एक वाक्य है, वो जैसा स्पिरिट है, आत्मा है, वैसे तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। बी स्पिरिट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन स्पिरिट, तभी उसकी अनुभूति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो। कोई ना कोई क्या कर दो, उसको होमवर्क अपने आप को दे दो। हर दिन अपने आप को एक होमवर्क दो, बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। रोज बाप होमवर्क देते हैं, कौन सा? हर दिन की मुरली ही होमवर्क है। ऐसी बहुत सारी बातें है उसमें जो ढूंढना पड़ेगा। ये विशेषता है, ये वरदान, ये विशेष धारणाएं क्या है, ये होमवर्क है ना। होमवर्क करते हो या क्लास में सुना फिर खत्म, क्लास से बाहर निकले और खलास। खबरदार अगर किसी ने याद करने की कोशिश की तो नो चर्चा। अगर कोई करता है तो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, दूसरा कर रहा है ज्ञान की चर्चा, तो अच्छा नहीं लगता है कईयों को। हाँ बहुत समझते हैं। होमवर्क किस लिए मिलता है? बिजी रहने के लिए। जब तक बिजी नहीं तब तक प्रगति नहीं हो सकती, बिजी रखना होगा। खाली अगर रहे तो निर्जन स्थान और खंडरों पर कौन आते हैं? भूतों का निवास होता है, तो भूत आ जाएंगे फिर। तो माता है, होमवर्क करती है। गॉडली स्टूडेंट होना या घर में जाती हो तो अपने को माता समझती हो। स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टूडेंट को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? स्टडी। अच्छे स्टूडेंट्स को बाकी तो कितना सहज करके देते हैं, सहज, कितना सहज करके देते हैं बाप। जरा भी मुश्किल नहीं, जरा भी मेहनत नहीं, कड़वी दवाई नहीं देते बाप। केवल अपने को आत्मा समझ और कुछ बाप को याद कर, इसमें तो जरा भी तकलीफ नहीं है। कि इसी में तकलीफ है सारी। तकलीफ है व्यर्थ में, व्यर्थ में तकलीफ है, समर्थ में तकलीफ नहीं। यहाँ स्थित होने में तकलीफ नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने में तकलीफ, यहाँ बैठने में तकलीफ नहीं है, पर बाहर का आकर्षण बहुत ज्यादा है। तो किस में बिजी रहते हो पांडव? बिजी रहते हो, बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। और कितना सहज होमवर्क है, जो सुना वो करना बस। कितनी खुशी है कि होमवर्क देने वाला कौन, कल भी बोला था ना, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा सर्जन कौन, क्वेरी भगवान, तुमको होमवर्क देने वाला कौन और कहां से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, इस बात का बाबा को बहुत नाज रहता है हमेशा। जब भी डबर विदेशी सामने बैठे रहते तो हमेशा एक प्रश्न तो होता ही है, कौन दूर से आया है, अच्छा कहां से आए हो, पहला होता है कहां से आए हो, अच्छा अमेरिका, लंदन, रशिया, अच्छा तो कौन दूर से आया है, बाप या तुम, कितना दूर से आते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिक्षक बन करके आते हैं, कितने नशे की बात है। क्या करता था, अच्छा
वो अगर कल करके नहीं लाया तो उसको बाहर खड़ा कर
कभी कभी टीचर को ऐसा रूप भी धारण करना पड़ता है ना, सारे कल्प में ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा, कैसा 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 शिक्षक, एक और पढ़ाई रहा है, पढ़ाई रहा है, उसका धैर्य तो देखो, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर वो तो है, धैर्य का सागर भी है वो, जितना धैर्य उसमें है उतना किसी में नहीं है, कितना धैर्य है वो, कितने उसके अच्छे अच्छे विद्यार्थी पलायन कर गए फिर भी नए आ रहे हैं, उनके साथ भी धैर्य है, जिनको बहुत पालना दी वो आज नहीं है फिर भी धैर्य है, आ जाएंगे, और वही बात बार बार पढ़ाने भी उसको ये नहीं लगता है। ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा, आज तक मनुष्यों ने पढ़ाया, सतयुग में देवताओं ने पढ़ाया, द्वापर कलयुग में मनुष्यों ने पढ़ाया, साधु संतों ने पढ़ाया, ऋषियों ने पढ़ाया, तपस्वियों ने पढ़ाया, महात्माओं ने पढ़ाया, धर्मावलंबियों ने पढ़ाया और धर्म नेताओं ने पढ़ाया, जो पढ़ाया वो शास्त्रों का पढ़ाया, उधार का ज्ञान इधर उधर का पढ़ के हमको सुनाया,
मेंढक जैसा
वो पढ़ाने आया, ओरिजिनल खुद उसको किसी ने नहीं पढ़ाया है, उसका कोई शिक्षक नहीं है, वो कोई तैयारी करके भी नहीं आता है, जब तैयारी करके कोई आए तो गलतियां हो सकती है, बहुत गलतियां होने की चांसेस है, वो किसी भी तरह की तैयारी नहीं करके आता है, आकर बैठता है और बैठकर फिर बोलता है अच्छा आज ये देख रहा हूं, आज सेनापति देख रहा हूं और घोड़ेसवार देख रहा हूं और महारथी देख रहा हूं, तो कभी अलंकार देख रहा है, तो कभी विश्व कल्याणकारी आत्माओं को देख रहा है, तो कभी साजन सजनियों को देख रहा है, कभी कुछ किसको कुछ, कभी लोकसभा, क्या क्या देखता है वो, कभी सोच के नहीं आता अभी जाकर ये देखूंगा और इस पर मुरली चलाऊंगा, अगर वो सोच के आए तो गलतियां होगी उससे, अगर वो तैयारी कर कर आए तो गलतियां होगी उससे, पर उससे कभी गलती ही नहीं होती, इसका भी राज है, क्योंकि वो कुछ सोच के नहीं आता, असोच है, आता है और क्योंकि सब कुछ उसमें समाया हुआ है। इंग्लिश में एक कविता है, द अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड थाउ वर्ट लेफ्ट अलोन एवरी एग्जिस्टेंस विल एग्जिस्ट इन दी, इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाए, सन यूनिवर्स सब कुछ जो कुछ है, और केवल तू अकेला रह जाए, जो कुछ इस संसार में दृष्टिगोचर है सब कुछ समाप्त तो हो जाए और तू अकेला रह जाए, एवरी एग्जिस्टेंस विल एग्जिस्ट इन दी, सब कुछ तुझ में फिर भी रहेगा, तुझ में जो है वो कभी समाप्त तो नहीं होगा, ये सारा कायनात और संसार तुझ में, ऐसा कहा हुआ है, कोई कवि लिखता है, भगवान के लिए।
फिर भी मनुष्य ने भगवान को इन शब्दों में
बहुत सोचा है, हर एक ने। गीता में भी कैसे कैसे श्लोक है कि उसमें तो ऐसा है कि ये सारा संसार मुझ में है पर मैं संसार में नहीं है, ऐसा भी एक वाक्य है। ये सारा संसार मुझ में है परंतु मैं इस संसार में नहीं हूं। भगवान के बारे में इतनी सारी कल्पनाएं हैं, एक रहस्यमय विषय रहा है परमात्मा, जिसने जितना सोच सका अपनी बुद्धि को खींचकर उतना उसने सोचा है। इतना होने के बाद भी उसने जो आकर कहा वो कुछ और ही था। हर एक ने कहा ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये है वो नहीं है, और वो फिर भी सुनता रहा ऊपर से चुपचाप। उसको ये भी नहीं लगा कि जाऊं और इनको ठीक करूं, मेरे वजह से इतना बड़ा युद्ध, रक्तपात और धरती रक्त से रंजित हो रही है, जाकर रोकू। अपने समय पर ही आया, और जो आज तक सबने कहा सबको खारिज कर दिया। ये नहीं, अब मैं जो कहता हूँ वो सत्य है, अब जज फॉर योर सेल्फ, मैं जो सुनाता हूँ राइट है, शास्त्रों में जो लिखा राइट है। तो क्या सुना? होली हंस अर्थात व्यर्थ और समत। हमारे जीवन में व्यर्थ कहाँ है, कौन से वो कारण है जिससे व्यर्थ की अभिव्यक्ति होती है, व्यर्थ का उद्गम होता है, व्यर्थ की का निर्माण होता है। उन तीन चार कारणों में से एक जो सबसे मुख्य कारण है उसको समाप्त करना है, कि ये है वो कारण। हमें लग रहा है किसी और की वजह से व्यर्थ चल रहा है, सारा खेल इधर है, सब कुछ इधर ही है, यहीं से निकल रहा है, किसी और की वजह से नहीं। इस व्यर्थ को समाप्त करना है। और व्यर्थ की क्या परिभाषा, अंधकार की क्या परिभाषा दे? वो अंधकार है, वो है ही नहीं, वो तो अभाव है प्रकाश का। इसके लिए व्यर्थ से मुक्त होने के लिए व्यर्थ के पीछे नहीं पड़ना है। व्यर्थ के मुक्त होने की विधि है समर्थ को लाओ, प्रकाश को लाओ, तो व्यर्थ स्वतः ही विसर्जित हो जाएगा। समर्थ को कैसे लाएंगे? ज्ञान से। बस एक ही मार्ग है समर्थ को लाने का, उसने जो कुछ कहा है उसमें रमन करना, ज्ञान में ही रमन करना, उससे बाहर निकले कि बस व्यर्थ ही व्यर्थ है। काजल की कोठरी में दाग लागे ही लागे, इतना काजल है सारा, कहीं ना कहीं लग जाएगा। इसके लिए बस एक ही मार्ग है, उस समर्थ उसके ज्ञान को पकड़ के रखना बुद्धि में। व्यर्थ का वर्णन, व्यर्थ का सोचना, व्यर्थ का बोलना, जितने जो समाचार दिलचस्प बाबा ने कहा उतने वो व्यर्थ होते हैं। समाचार किसका क्या हुआ, किसने क्या किया, किधर क्या चल रहा है, ये सब व्यर्थ की श्रेणी में आता है। क्यों? आज की मुरली में है पर चिंतन, चौथा अलंकार है। चक्र तीन प्रकार से चलता है, एक वो जो स्वतः ही चल रहा है, दूसरा वो जो चला रहे हैं पकड़ पकड़ के चला रहे हैं उसको, और एक है जो लेफ्ट चल रहा है। लेफ्ट अर्थात क्या और क्यों? लेफ्ट अर्थात परचिंतन, दूसरों का चिंतन। बाबा ने कहा है परचिंतन पतन की जड़ है। क्यों है उसमें, क्या और क्यों? क्या और क्यों में से क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे पहला जो प्रश्न उठता है मन में वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ज्ञान ऐसा कहता है, अच्छा इतने सालों से ज्ञान में है तो भी ऐसा करते हैं, क्यों, क्यों आया? तो क्यों का जो, क्योंकि जो सेना है बहुत बड़ी है, उससे युद्ध बाबा ने कहा जाल है। क्या और क्यों? जाल है, माया की चक्री में आ जाते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाना बंद करते हैं और चक्री में आ जाते हैं। और किसी और मुरली में कहा है जो चक्कर में आ जाते हैं वो चकना चूर हो जाते हैं। तो व्यर्थ कहां से जन्म लेता है? व्यर्थ का उद्गम स्थान है क्यों, व्यर्थ की गंगोत्री क्यों है, क्यों के पीछे इतनी बड़ी पंक्ति, इतनी बड़ी कतार, इतनी बड़ी क्यों है कि उससे आत्मा छूट नहीं पाती है। सिर वो क्यों, एक क्यों 100 क्यों को जन्म देता है। ये क्यों 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 कैसे इसको समाप्त करें, उसकी एक ही विधि है स्वदर्शन। दूसरों को देखा, दूसरा क्या कर रहा है करने दो, हमें कुछ नहीं, हम आए किस लिए है और वो किस लिए आया है, वो आया है व्यर्थ के लिए तो करने दो, ही इज ऑन द राइट ट्रैक, जो करना है उसको करने दो, हम जिस कार्य के लिए हम वही करें। तो मन को व्यर्थ से मुक्त करना अर्थात होली हंस बनना। फिर है स्वच्छता, उसमें भी वही समर्थ जहां है वो है स्वच्छता। केवल रत्न ढूंढना है बस, ये मुरली है इसमें से रत्नों को ढूंढो और बुद्धि में रखो, रत्नों को ढूंढो और बुद्धि में रखो, रत्नों को ढूंढो और बुद्धि में रखो, यही हमारा काम है। अगर ये नहीं किया तो व्यर्थ स्वतः आ जाएगा, क्योंकि कोई भी स्थान वैक्यूम नहीं रह सकता, रिक्त नहीं रह सकता, तुरंत भर जाएगा, पुरानी यादें आ जाएंगी, पुराने संकल्प आ जाएंगे, पुराने भोग की स्मृति आएगी और वो आत्मा को विकारों में गिराएगी, वो तो और खतरनाक है। भोग की स्मृति इस जन्म में तय नहीं, पर जन्म जन्म के भोग की स्मृति आत्मा में है। रत्न की वैल्यू अनगिनत, पहले तो वैल्यू को समझना पड़ेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम नहीं समझ रहे ना, रत्न लिए और फेंक दिया, याद नहीं रखा अर्थात फेंक दिया। और फिर विधि बताई, होमवर्क, अभी कुछ संडे पहले मुरली चली ना, एक शब्द की गहराई में जाओ, रोज अपने आप को एक टॉपिक दो सोचने के लिए, ज्ञान रत्नों की गहराई में जाना है। जब तक गहरे नहीं उतरेंगे तट पर बैठ प्राप्ति नहीं होगी, वो कविता बताई थी ना, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी, कांटे रौंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम जादू भरी नगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। हम गोताखोर है, अंदर गहरे जाना होगा, वहीं पर मोती है, तट पर कुछ नहीं मिलेंगे, तट पर तो केवल पत्थर है, जिनको पत्थर बीनने हैं बीनने दो, हमें अंदर जाना है, गहराई में जाना है, रत्नों को निकालना है, खोजना है उन रत्नों को, रत्न है सागर में। तो स्टडी, स्टूडेंट का काम है स्टडी करना, किसकी स्टडी करेंगे, मुरली की स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे स्टूडेंट करता है वैसे। ये कनरस की बात नहीं है, परसों की मुरली, यहाँ कनरस की बात नहीं है, अरे तुम कहते हो यहाँ भगवान आता है तो बहुत लोग क्यों नहीं आते, अरे यहाँ तो मरना होता है, यहाँ कनरस की बात नहीं है। तो ये कनरस नहीं है, मुरली बहुत अच्छी सुनी, वाह क्या मुरली थी, बहुत ही बढ़िया, क्या था वो मत पूछो, थी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनते समय, फिर हम में और भक्तों में क्या अंतर रह गया, भक्तों को भी बहुत अच्छा लगता है जब भागवत कथा और रामायण सुनते हैं, तो कितना आनंद आता है, राम का वर्णन सुनते हुए, कृष्ण का वर्णन सुनते हुए, आहा आंखों से आंसू आ जाते हैं, मुरली सुनते भी आंखों से आंसू आ जाते, परंतु क्या था वो ही नहीं पता, कन रस तो नहीं हो रहा है, स्टडी करना है। स्टूडेंट स्टडी कैसे करते हैं, बैठते कमरे में और दिन रात पढ़ते रहते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाओ किसी भी एग्जाम के दिनों में ऐसी स्टडी करते हैं, बाप रे बाप भयंकर, ना दिन ना रात, दिन रात पढ़ते रहते हैं, दिन रात पूरा कमरा देखो तो पूरे नोट्स लगाए हुए, बाथरूम में भी नोट्स, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला, ये ड्रग इसकी एक्शन ये बीमारी उसके ये कॉजेस उसकी ये ट्रीटमेंट इसका ये ड्रग उसका ये डोज। लाइब्रेरी खुलती है 9 बजे, लोग जाते हैं लाइब्रेरी 6 बजे सुबह, और वो जो वरांडे में बैठे रहते हैं, बंद होती है 9 बजे, बैठते हैं 11 बजे तक वो लाइट के नीचे, कितना जुनून है पढ़ाई का, दिन रात पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, स्वप्न में भी वही दिखता है, ये बीमारी उसका वो इसमें इसका इतना डोज उसमें इतना डोज,
बीमारी भी आ जाता
दिन रात पढ़ते रहते, ऐसी पढ़ाई चाहिए। ये वो है हद की, ये है बेहद की, वो है देह की, ये है आत्मा की। ऐसी जब पढ़ाई होगी दिन रात उसके पीछे लगे, कोई एग्जाम है और कैसे पढ़ता है, तो ही वो अंदर घुसता है, तभी तो कहाँ जाके मास्टरी होती है उसके, नहीं तो कहाँ से होगी। ऐसा ढीला ढीला बस सुने और वाह बहुत बढ़िया और चले अपने सेवा में, कहाँ से टिकेगा वो। उसके लिए तो गर्दन पकड़कर उसको डुबाना होता है उसमें उसको भिगो के रखना पड़ता है उधर थोड़ा पानी में, तो कोई अंकुरित होता है वो सुबह मन की गर्दन और बुद्धि की गर्दन पकड़कर उसको डुबा के रो, कहता है नहीं निकालो बाहर, नहीं डूबने दो उसको। तो घुसता है अंदर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना करने के बाद थोड़ा समझ में आता है, और ये नहीं किया तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो होमवर्क बहुत जरूरी है, हम सब गॉडली स्टूडेंट है, भगवान शिक्षक पढ़ाने आ रहा है, शिक्षक बनकर पढ़ाने आ रहा है। बाबा ने कहा है कि यही उसका मान रखना है। अच्छा, ओम शांति।